सभी सुनने वालों का इस ज्ञान गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो काफी प्रभावशाली रही है और आज भी है।
हाँ, स्टीफन जे गोल्ड की द मिस मेजर ऑफ मैन।
जी, हिंदी में अगर कहें तो शायद इंसान को गलत तरीके से मापना या इंसान के गलत मापदंड।
बिल्कुल। और देखिए ना, ये किताब आज भी मतलब कितनी जरूरी है।
सच में,
क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं जेनेटिक्स है या आजकल ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
हाँ, AI की तो बहुत चर्चा है।
इन सब के नाम पर वही कोशिशें हो रही हैं, इंसानी दिमाग को, काबिलियत को कैसे मापें, कैसे रैंक करें।
गोल्ड की किताब हमें इतिहास में झांकने का मौका देती है कि ये कोशिशें पहले कैसी थीं
और कितनी भ्रामक और कभी कभी तो खतरनाक भी।
बिल्कुल, ये किताब एक तरह से चेतावनी है कि कैसे मतलब विज्ञान की आड़ लेकर
हाँ
सामाजिक भेदभाव को, पूर्वाग्रहों को सही ठहराया जाता रहा है।
ये हमें सिखाती है कि भाई, जब भी कोई इंसानों को एक स्केल पर ऊंचा नीचा साबित करने लगे
तो सवाल पूछो,
जरूर पूछो,
जरूर।
तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं।
जरूर।
सबसे पहले लेखक से ही शुरू करते हैं, स्टीफन जे गोल्ड। कौन थे ये और इस विषय पर लिखने के लिए इतने अहम क्यों माने जाते हैं?
स्टीफन जे गोल्ड 1941-2002 अपने समय के बहुत ही जाने माने प्रभावशाली वैज्ञानिक और लेखक थे।
हार्वर्ड में प्रोफेसर थे।
जी, हार्वर्ड में। मुख्य रूप से तो वो जीवाश्म विज्ञानी मतलब पेलियोन्टोलॉजिस्ट,
हाँ,
और विकासवादी जीव विज्ञानी यानी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे।
और विज्ञान के इतिहास में भी उनकी गहरी रुचि थी, है ना?
बहुत ज्यादा। उनकी एक थ्योरी भी बहुत मशहूर है, नाइल्स एल्ड्रिज के साथ दी थी, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम।
अच्छा, हाँ, जिसमें वो कहते हैं कि विकास हमेशा धीमी गति से नहीं होता, बल्कि लंबे ठहराव के बाद अचानक तेज झटकों में होता है।
लेकिन इस किताब के लिए गोल्ड की जो खासियत थी वो सिर्फ उनका बायोलॉजिस्ट होना नहीं था।
हाँ।
उनमें दो चीजें कमाल की थी।
क्या?
एक तो वो जीव विज्ञान और स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़ों के माहिर थे।
अच्छा।
तो उनमें वो तकनीकी समझ थी,
हाँ,
कि पुराने वैज्ञानिकों के काम को, उनके डेटा को बारीकी से देख सकें
और गलतियां पकड़ सकें।
हाँ, उनकी गड़बड़ियों को, उनके तरीकों की कमियों को पकड़ सकें। वो उनके ओरिजिनल डेटा को दोबारा एनालाइज करके दिखा सकते थे कि देखो यहाँ चूक हुई है।
और दूसरी बात,
दूसरी तरफ वो विज्ञान के कमाल के इतिहासकार थे। वो ये समझते थे कि साइंस कोई अलग थलग चीज नहीं है, वो समाज में ही होता है,
समाज और राजनीति से जुड़ा
हुआ। बिल्कुल।
वो बता सकते थे कि उस जमाने में नस्ल, क्लास, जेंडर को लेकर जो सोच समाज में थी,
हाँ,
उसने कैसे वैज्ञानिकों के सवालों को, उनके नतीजों को तक प्रभावित किया।
वाह। और उनकी लिखने की शैली भी, तो अरे वो तो कमाल ही थी। बहुत मुश्किल वैज्ञानिक बातें भी इतनी आसानी से और इतने दिलचस्प तरीके से समझा देते थे आम लोगों को।
तो ये जो कॉम्बिनेशन था, वैज्ञानिक समझ, ऐतिहासिक नजर और लिखने का हुनर,
ये उन्हें इस बहुत ही संवेदनशील विषय पर मतलब विज्ञान की आड़ में हुए भेदभाव पर लिखने के लिए एकदम सही व्यक्ति बनाता था।
ठीक है, तो अब आते हैं किताब पर, द मिस मेजर ऑफ मैन। इसका कह सकते हैं केंद्रीय विचार क्या है, ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है?
असल में ये किताब एक जोरदार हमला है जैविक निर्धारणवाद पर, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म।
अच्छा, ये क्या होता है?
ये वो सोच है जो मानती है कि भाई इंसान की बुद्धि, उसका व्यवहार, समाज में उसकी जो भी जगह है, वो काफी हद तक उसके जीन्स से, उसकी बायोलॉजी से पहले से तय है
और उसे नापा जा सकता है।
हाँ, कि वो जन्मजात है और उसे निष्पक्ष तरीके से नापा जा सकता है और फिर लोगों को रैंक किया जा सकता है, ये ज्यादा बुद्धिमान, ये कम।
ओ, और गोल्ड कहते हैं कि ये पूरी सोच ही
गलत है। ये पूरा इतिहास, चाहे वो 19वीं सदी में खोपड़ी नापने का फैशन हो, कपालमिथि,
क्रैनियोमेट्री,
हाँ क्रैनियोमेट्री, या फिर 20वीं सदी के IQ टेस्ट गोल्ड, कहते हैं ये असली विज्ञान नहीं, ये सूडो साइंस है, छद्म विज्ञान,
मतलब वैज्ञानिक होने का दिखावा।
बिल्कुल। ये भरा हुआ है सांस्कृतिक भेदभाव से, गलत तरीकों से और वैज्ञानिकों के अपने अनजाने पूर्वाग्रहों से।
गोल्ड इसमें दो बड़ी गलतियों की बात करते हैं ना?
हाँ, दो मुख्य भ्रांतियां। पहली है मूर्तिकरण, रियोफिकेशन।
मूर्तिकरण मतलब?
मतलब ये कि इंटेलिजेंस या बुद्धि जैसी कोई चीज, जो असल में तो एक अमूर्त विचार है, एक कॉन्सेप्ट है,
हाँ,
उसे ऐसे मान लेना जैसे वो कोई ठोस फिजिकल चीज हो, जिसे नापा जा सके, जैसे किसी की हाइट या वजन।
अच्छा, जैसे बुद्धि दिमाग में रखी कोई चीज हो।
हाँ, यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। और दूसरी गलती,
श्रेणीकरण, रैंकिंग।
बिल्कुल। एक बार आपने मान लिया कि बुद्धि एक नापने लायक चीज है।
तो फिर अगला कदम होता है कि उस नाप के आधार पे लोगों को लाइन में लगा दो।
हाँ, बेहतर से बदतर के एक सीधे स्केल पर फिट करने की जिद, ये अच्छा या बुरा, ये ऊपर या नीचे। गोल्ड का मकसद यही दिखाना है कि इंसान की कीमत को उसकी काबिलियत को एक नंबर में समेटने की ये कोशिश, ये वैज्ञानिक तौर पर बेबुनियाद है
और सामाजिक तौर पर खतरनाक भी।
बहुत खतरनाक। तो किताब हमें इसी इतिहास की एक यात्रा पर ले जाती है।
कहाँ से शुरू होती है यात्रा?
शुरुआत होती है 19वीं सदी से, कपालमिति से। वो वैज्ञानिक जो मानते थे कि खोपड़ी का साइज ही बुद्धि का पैमाना है।
सैमुअल मॉर्टन और पॉल ब्रोका जैसे लोग।
हाँ, मॉर्टन अमेरिका के डॉक्टर थे, दुनिया भर से खोपड़ियां जमा की उन्होंने
और उन्हें नापते थे।
हाँ, कभी शीशे के छर्रों से, कभी सरसों के दानों से उनकी क्षमता नापते थे। और उनकी नतीजे क्या निकले?
कि गोरे यूरोपियन लोगों के दिमाग सबसे बड़े हैं,
फिर नेटिव अमेरिकन, और अश्वेत लोगों के दिमाग सबसे छोटे, मतलब उनकी नस्लीय सोच के हिसाब से।
लेकिन गोल्ड ने क्या किया?
गोल्ड ने मॉर्टन का ओरिजिनल डेटा फिर से जांचा।
अच्छा, और क्या मिला?
पता चला कि मॉर्टन ने अनजाने में ही सही पर बहुत सारी गड़बड़ियां की थी। डेटा छुपाया, हिसाब में गलती की, शरीर के साइज या लिंग का ध्यान नहीं रखा, अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, सब कुछ ऐसा जिससे नतीजा उनकी सोच से मेल खा जाए।
और जब गोल्ड ने सही से एनालाइज किया
तो पता चला कि अलग अलग नस्लीय समूहों के बीच दिमाग के औसत आकार में कोई खास फर्क था ही नहीं।
कमाल है, मतलब पूर्वाग्रह किस हद तक जा सकता है।
बिल्कुल। फिर यूरोप में पॉल ब्रोका थे, फ्रांस के मशहूर डॉक्टर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट।
वो भी यही करते थे।
हाँ, मॉर्टन से ज्यादा कुशल थे, पर पूर्वाग्रह उनमें भी उतने ही थे। उन्हें जुनून था ये साबित करने का कि यूरोपीय मर्द सबसे बुद्धिमान है,
और अगर डेटा उनके हिसाब से नहीं आता
तो वो तरीके बदल देते या फिर अजीब अजीब सी सफाइयां गढ़ते थे।
जैसे
जब पता चला कि जर्मन लोगों का औसत दिमाग फ्रेंच लोगों से थोड़ा बड़ा है।
हाँ।
तो कहने लगे कि साइज नहीं, क्वालिटी मैटर करती है।
या
जब किसी बहुत मशहूर विद्वान का दिमाग औसत साइज का निकला तो कहा कि जरूर उसके दिमाग में खून का दौरा बेहतर होगा, इसलिए भारी होगा।
मतलब नतीजा पहले से तय था, बस उसे सही ठहराने के बहाने ढूंढने थे।
एग्जैक्टली। और इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल औरतों को बौद्धिक रूप से कमतर साबित करने के लिए भी किया गया।
ये तो हुई 19वीं सदी की बात, खोपड़ी नापना।
हाँ, फिर किताब हमें 20वीं सदी में ले जाती है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग का जमाना,
IQ टेस्ट।
गोल्ड कहते हैं कि ये भी उसी पुरानी सोच का एक नया, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रूप था।
हाँ, वही जैविक निर्धारणवाद, बस तरीका बदल गया।
यहाँ गोल्ड सबसे पहले अल्फ्रेड बिने की बात करते हैं।
बिने, जिन्होंने फ्रांस में पहला इंटेलिजेंस स्केल बनाया था।
जी, 1905 में, और उनका इरादा नेक था। वो पेरिस के स्कूलों में उन बच्चों की पहचान करना चाहते थे जिन्हें पढ़ाई में ज्यादा मदद की जरूरत थी।
वो ये नहीं मानते थे कि उनका टेस्ट कोई जन्मजात फिक्स्ड इंटेलिजेंस नाप रहा है।
बिल्कुल नहीं, वो इस विचार के सख्त खिलाफ थे।
लेकिन अमेरिका में कहानी बिल्कुल पलट गई।
हाँ, अमेरिका में हेनरी एच गॉडार्ड जैसे लोग आए, उन्होंने बिने के टेस्ट का अनुवाद किया और उसे इंटेलिजेंस नाम की एक अकेली चीज का माप बना दिया।
उन्होंने मोरॉन यानी मंदबुद्धि शब्द भी गढ़ा था, है ना?
हाँ, और वो मानते थे कि ये हालत खानदानी है, इसे नसबंदी या लोगों को संस्थाओं में बंद करके ही खत्म किया जा सकता है।
ओ, ये तो यूजेनिक्स वाली सोच है।
बिल्कुल। उन्होंने एलिस आइलैंड पर, जहां अप्रवासी आते थे, अपने पक्षपाती टेस्ट का इस्तेमाल करके ये साबित करने की कोशिश की कि यहूदी, इटालियन, रशियन लोग बड़े पैमाने पर फीबल माइंडेड यानी कमजोर दिमाग वाले हैं।
भयानक बात है।
फिर आए लुईस टर्बन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। उन्होंने स्टैनफोर्ड बिनी टेस्ट बनाया जो अमेरिका में दशकों तक स्टैंडर्ड रहा।
टर्मन भी यूजेनिक्स को मानते थे।
पक्के यूजेनिसिस्ट थे। मानते थे कि IQ पूरी तरह खानदानी है और समाज को IQ स्कोर के हिसाब से बांट देना चाहिए। ऊंचे IQ वाले लीडर बने, कम IQ वाले छोटे मोटे काम करें।
और रॉबर्ट यर्किस, उन्होंने सेना में टेस्ट करवाए थे।
हाँ, रॉबर्ट यर्किस हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अमेरिकी सेना में लाखों रंगरूटों पर बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस टेस्ट करवाए।
आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट।
जी, अल्फा पढ़े लिखों के लिए, बीटा अनपढ़ों के लिए। गोल्ड बताते हैं कि इन टेस्ट का संचालन कितना खराब और पक्षपाती था।
सवाल भी अमेरिकी संस्कृति पर आधारित होते होंगे।
बहुत ज्यादा। जो नया आया है या अलग संस्कृति से है, वो कैसे जवाब देगा? फिर भी इन टेस्ट के नतीजों को सबूत माना गया।
किस बात का सबूत?
कि दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के अप्रवासी उत्तरी यूरोप वालों से कम बुद्धिमान हैं, और अश्वेत अमेरिकी सबसे नीचे हैं।
और इसी डेटा का इस्तेमाल 1924 के अप्रवासन कानून को पास करवाने के लिए किया गया, जिसने कई देशों, खासकर दक्षिणी और पूर्वी यूरोप और एशिया से आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम कर दी।
यानी एक छद्म वैज्ञानिक टेस्ट के नतीजों का इतना बड़ा राजनीतिक असर हुआ?
बिल्कुल।
किताब का एक हिस्सा थोड़ा तकनीकी है जो फैक्टर एनालिसिस पर बात करता है।
अच्छा, ये क्या चीज है?
चार्ल्स स्पीयरमैन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि लोग अगर एक तरह के दिमागी टेस्ट में अच्छा करते हैं तो अक्सर दूसरे तरह के टेस्ट में भी अच्छा करते हैं।
स्कोर आपस में जुड़े होते हैं,
कोरिलेटेड होते हैं।
हाँ,
तो स्पीयरमैन ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कॉमन फैक्टर है, एक जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर, जिसे उन्होंने जी कहा।
जी फैक्टर, ये तो सुना है।
पर गोल्ड का तर्क है कि ये जी कोई असल चीज नहीं है जो दिमाग में बैठी हो, ये बस एक स्टैटिस्टिकल नतीजा है, एक गणितीय अमूर्तता।
मतलब
ये फैक्टर एनालिसिस की वजह से दिखता है, क्योंकि टेस्ट में अक्सर एक जैसे ही सवाल होते हैं जो एक ही तरह की काबिलियत नापते हैं। इसे असल चीज मान लेना वही मूर्तिकरण वाली गलती है।
अच्छा, इसमें वो सर सिरिल बर्ट का भी जिक्र है ना, जिनके जुड़वा बच्चों वाले अध्ययन।
हाँ हाँ, सिरिल बर्ट का कुख्यात केस। उन्होंने जुड़वा बच्चों पर स्टडी करके दावा किया था कि आईक्यू बहुत ज्यादा हद तक खानदानी होता है, लेकिन बाद में पता चला कि उनका डेटा मनगढ़ंत था, फ्रॉड था।
ओह।
तो आखिर में गोल्ड अपनी बात फिर से दोहराते हैं कि इंटेलिजेंस नापने का यह पूरा इतिहास पक्षपाती विज्ञान का इतिहास है,
और वो इंसानी दिमाग की विविधता, उसकी बहुआयामी क्षमता की वकालत करते हैं।
जी।
और किताब के बाद के एडिशन में उन्होंने 1994 में आई एक और विवादित किताब द बेल कर्व की भी कड़ी आलोचना की।
अच्छा, क्यों? क्योंकि गोल्ड के मुताबिक वो किताब भी उन्हीं पुरानी गलतियों को दोहरा रही थी, वही मूर्तिकरण, वही श्रेणीकरण और वही दोषपूर्ण स्टैटिस्टिक्स।
तो इस पूरी चर्चा से, इस किताब से कुछ खास बातें, कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संदेश तो यही है कि जैविक निर्धारणवाद की सोच खतरनाक है।
ये मानना कि हमारी बायोलॉजी ही हमारी किस्मत है।
हाँ, ये वैज्ञानिक रूप से कमजोर तो है ही, सामाजिक रूप से भी बहुत नुकसानदेह है।
कैसे?
क्योंकि अगर हम मान लें कि गरीबी या समाज में किसी की पिछड़ी हुई स्थिति उसकी बायोलॉजी की वजह से है, तो फिर समाज अपनी जिम्मेदारी से बच निकलता है।
फिर हम कहेंगे कि ये तो नेचुरल है, हम क्या कर सकते हैं।
बिल्कुल, फिर हम गरीबी, भेदभाव जैसी समस्याओं से लड़ने की कोशिश क्यों करेंगे?
सही बात है। दूसरा संदेश,
विज्ञान एक सामाजिक गतिविधि है। साइंटिस्ट कोई आसमान से उतरे फरिश्ते नहीं होते,
वो भी इंसान है, अपनी संस्कृति, अपनी राजनीति, अपने पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं।
हाँ, गोल यही दिखाते हैं कि कैसे अक्सर वैज्ञानिकों की इच्छा होती थी कि उनके नतीजे उस समय के सामाजिक ढांचे को, जैसे गोरे मर्दों के दबदबे को, सही ठहराएं।
तीसरा, वो मूर्तिकरण वाली गलती, ये बहुत अहम है।
हाँ, इंटेलिजेंस जैसी जटिल अमूर्त चीज को एक ठोस नापने लायक वस्तु मान लेना, जैसे ही आप ये करते हैं
आप रैंकिंग के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जो कि चौथा पॉइंट है, श्रेणीकरण का खतरा।
बिल्कुल, लोगों को एक अकेले नंबर के आधार पर ऊपर नीचे रखना, ये इंसानी विविधता का कितना बड़ा अपमान है।
सोचिए ना, क्या हम किसी महान संगीतकार और किसी महान वैज्ञानिक को एक ही स्केल पर रैंक कर सकते हैं? बेतुकी बात है।
वही तो। पांचवा संदेश, आंकड़ों का दुरुपयोग।
नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स देखकर हमें लगता है कि बात बहुत ऑब्जेक्टिव होगी,
पर गोल दिखाते हैं कि डेटा उतना ही अच्छा होता है जितने उसके पीछे की सोच और तरीके। मॉर्टन के औसत निकालने के तरीके से लेकर फैक्टर एनालिसिस तक, पूर्वाग्रह आंकड़ों में भी घुस सकता है।
और एक और बात जो गोल के अपने काम से सीखने को मिलती है, मूल स्रोतों की जांच का महत्व।
बिल्कुल सही, उन्होंने सिर्फ दूसरों की आलोचना नहीं की, वो मॉर्टन और ब्रोका के ओरिजिनल डेटा तक गए।
ये हमें सिखाता है कि किसी भी दावे पर, खासकर बड़े दावों पर, आंख मूंद कर भरोसा ना करें, सबूत देखें, खुद जांचें।
और आखिर में एक सकारात्मक संदेश भी है, इंसानी क्षमता की विविधता का सम्मान।
हाँ, कि हमें एक ही तरह की बुद्धि के पीछे नहीं भागना चाहिए, हर तरह की काबिलियत की कद्र करनी चाहिए।
भारत के संदर्भ में सोचें तो ये कितना सच लगता है।
हाँ, यहाँ कैसे एक परीक्षा का स्कोर या किसी एक चीज में कुशलता ही सब कुछ मान ली जाती है,
चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, नौकरी हो। ये किताब याद दिलाती है कि इंसान इससे कहीं ज्यादा है, उसकी क्षमताएं बहुत विविध हैं।
बिल्कुल, किताब में कुछ विचार इतने शक्तिशाली हैं कि वो दिमाग में घूमते रहते हैं। सीधे कोर्स भले ना हो, पर उनका सार बहुत गहरा है।
हाँ, जैसे एक मुख्य तर्क जो बार बार आता है, इस पूरी परंपरा की सबसे बड़ी गलती इंटेलिजेंस जैसी जटिल चीज को एक अकेली नापने लायक असल चीज मान लेना है। जैसे ही आप ये गलती करते हैं, लोगों को रैंक करने और उनमें भेदभाव करने का रास्ता बहुत छोटा और खतरनाक हो जाता है।
ये तो जैसे पूरी किताब का निचोड़ है।
हाँ, और एक और विचार जो मुझे बहुत छूता है, वो कुछ ऐसा है, मुझे आइंस्टाइन के दिमाग के वजन या उसकी सिलवटों में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी इस एहसास में कि न जाने कितने आइंस्टाइन जैसे दिमाग वाले लोग गरीबी और मौकों की कमी के कारण कपास के खेतों और पसीने की दुकानों में ही अपनी जिंदगी जीकर मर गए होंगे।
उफ, ये सीधा सामाजिक असमानता पर चोट करता है कि असली मुद्दा बायोलॉजी नहीं अवसर है।
बिल्कुल, और विज्ञान की प्रकृति पर यह कहना, विज्ञान कोई ऑब्जेक्टिव सच खोजने वाली मशीन नहीं बल्कि एक इंसानी गतिविधि है जो अपनी संस्कृति में रची बसी है। वैज्ञानिक अक्सर वही तथ्य खोजने की तरफ झुकते हैं जो उनके समाज की मान्यताओं को सही ठहराते हों।
ये विज्ञान को ज्यादा संतुलित नजरिए से देखने में मदद करता है।
और वो आर्मी आईक्यू टेस्ट वाली बात, पहले विश्वयुद्ध के आर्मी टेस्ट के नतीजे असल में अलग अलग नस्लीय समूहों की जन्मजात बुद्धि के बारे में कुछ नहीं बताते।
हाँ, वो गरीबी, शिक्षा की कमी और अमेरिकी संस्कृति से अपरिचय के असर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं।
मतलब टेस्ट जन्मजात बुद्धि नहीं नाप रहे थे,
बल्कि ये नाप रहे थे कि कोई अमेरिका में कितने समय से है और वहाँ के कल्चर को कितना जानता है।
और बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की वो परिभाषा, ये वो सिद्धांत है जो दावा करता है कि इंसानों के व्यवहार के नियम और अलग अलग समूहों जैसे नस्ल, वर्ग, लिंग के बीच जो सामाजिक और आर्थिक फर्क हैं वो उनके जन्मजात खानदानी अंतरों से पैदा होते हैं, और समाज इस मायने में हमारी बायोलॉजी का ही आईना है।
ये साफ करता है कि गोल्ड किस बड़ी और खतरनाक सोच से लड़ रहे थे।
ये सारे विचार सोचने पर मजबूर करते हैं, और सिर्फ सोचने पर ही नहीं, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कनेक्शन है। बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें हर वैज्ञानिक लगने वाले दावे पर सवाल उठाना सीखना चाहिए,
खासकर वो दावे जो किसी जटिल सामाजिक चीज जैसे गरीबी या सफलता को किसी आसान से बायोलॉजिकल कारण से जोड़ने की कोशिश करें।
हाँ, पूछना चाहिए, भाई ये रिसर्च किसने फंड की, क्या डेटा की कोई और व्याख्या हो सकती है, कहीं इसमें कोई छिपा हुआ कल्चरल बायस तो नहीं है।
दूसरा, शिक्षा में हमें मानकीकृत टेस्ट और नंबरों पर हद से ज्यादा निर्भर होने से बचना चाहिए।
हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहिए, ये मानना कि हर बच्चा सीख सकता है, उसकी काबिलियत बढ़ सकती है,
न कि ये कि उसकी बुद्धि जन्म से तय है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो अलग अलग तरह की प्रतिभाओं को पहचाने, उन्हें निखारे।
तीसरा, ये किताब हमें आज की कई बहसों को समझने का एक ऐतिहासिक नजरिया देती है।
जैसे?
जैसे अप्रवासन पर बहस, या आरक्षण पर, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की नैतिकता पर। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे पहले भी विज्ञान का इस्तेमाल भेदभाव को सही ठहराने के लिए हुआ है।
चौथा, एक व्यक्तिगत स्तर पर हमें खुद को और दूसरों को रैंक करने की आदत से बचना चाहिए।
हाँ, चाहे वो परीक्षा के नंबर हों या सैलरी या सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिलें, हमें इंसानों की जटिलता और विविधता की कदर करनी चाहिए।
हर किसी का मूल्य है जो किसी एक नंबर से कहीं ज्यादा है।
बिल्कुल। और पांचवा, मीडिया में जो पॉप साइंस की खबरें आती हैं उनसे सावधान रहें।
वो जो दावा करती हैं कि इंटेलिजेंस का जीन मिल गया या खुशी का जीन मिल गया।
हाँ, गोल्ड का काम हमें सिखाता है कि ऐसी बातें लगभग हमेशा चीजों का हद से ज्यादा सरलीकरण होती हैं, सच्चाई कहीं ज्यादा पेचीदा होती है।
तो अंत में इस सब से हम क्या लेकर जाएं? सबसे बड़ा सबक क्या है?
मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यह है कि विज्ञान ज्ञान पाने का हमारा सबसे शक्तिशाली औजार होते हुए भी गहरा मानवीय है, और इसलिए उसमें मानवीय कमजोरियां भी आ सकती हैं। और मेरे लिए बिनेट की कहानी कैसे एक अच्छा इरादा, एक मददगार टूल, गलत हाथों में पड़कर भेदभाव का हथियार बन गया,
ये दिखाता है कि किसी भी विचार या तकनीक का इस्तेमाल कितना मायने रखता है।
अंततः ये किताब हर इंसान में जो एक असीम जटिलता है, जो असीम क्षमता है, उसकी एक भावुक रक्षा है, एक अपील है कि हम इंसानों को नंबरों की बेड़ियों में जकड़ना बंद करें। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।